क्योंकि वो लोग जिनकी मेरे जितनी उम्र भी होती है वो कहते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। और जिसको मैं अपनी जिंदगी का मकसद कह रहा था वो तो झूठ है। जिसके नतीजे में जब हम बूढ़े होना शुरू होते हैं तो हमें एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, फिर अचानक रिटायर होकर लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, तस्बीहां रख लेते हैं और कहते हैं बस जी मैं तो तहज्जुद में उठता हूं और ये मस्जिद की टूटियां छूटियां मैं ठीक करवा देता हूं, बस मैं यही करता हूं। खवातीन जो हैं वो मिलाद की महफिलें करवाना शुरू कर देती हैं। तो मिलाद की महफिलें कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं वो सारा कुछ जो हमने सारी जिंदगी में नहीं किया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज ही बैठकर अभी और जब भी आपको फुर्सत मिले हम फौरी तौर पर फैसला कर लें और जांच लें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। आखिर अल्लाह ताला ने इतने एहतमाम से इंसान को पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा जिसके लिए पैदा किया है। मैं ये और ये हर शख्स के लिए इंडिविजुअल है और यूनिक है। जो अपनी जिंदगी का मकसद मैं तायुन करूंगा वो साजिदा बहन का उससे मुख्तलिफ होगा, आपका बहुत मुख्तलिफ होगा। लिहाजा किसी को यह कहना कि अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको तीन प्रिंसिपल, तीन गाइडलाइंस जो है जो कि लिटरेचर ने और लोगों ने मेहनत करके निकाली हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आप जो भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाना चाहें उसके तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि आप उसको रिकॉर्ड करना चाहती हैं उसका पहला इंग्रेडिएंट ये है कि जो आपकी जरूरत है वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। फर्ज करें घर आपकी जरूरत है, गाड़ी आपकी जरूरत है, कारोबार आपकी जरूरत है, पैसा आपकी जरूरत है, जायदाद आपकी जरूरत है, जो चीज आपकी जरूरत है उसको हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है मगर वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। इसलिए कि आप जितना बड़ा मकसद भी जरूरत को मकसद बना लें कुछ अरसे के बाद उसको हासिल कर लेगी और जब आप हासिल कर लेंगे फिर क्या करेंगे। मेरा एक शेर है कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा। अगर फर्ज करें आपके जहन में यह था कि मेरा बहुत बड़ा घर हो और मेरे पास इतने पैसे हो और मेरी इतनी गाड़ियां हो वो तो आपको मिल जाएंगी, फिर क्या करेंगे। उसके बाद तो सिर्फ खुदकुशी बचती है, जब जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। अब खुदकुशी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग खुदकुशी की बजाय एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो मकसद जो असल में मकसद नहीं होता, जब वो अचीव हो जाता है तो इंतहा दर्जे की फ्रस्ट्रेशन, इंतहा दर्जे की एंजाइटी, डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एंगर पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये आप याद रखिएगा, कागज पर लिख लीजिए इस बात को ज़हन के कागज पर कि जो चीज आपकी जरूरत है अगर वो आपने अपना मकसद बना लिया, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप जिंदगी की जरूरियात हासिल करने के लिए जायज और हलाल कोशिश ना करें। लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी के मकसद को, अपनी जरूरियात को अपना मकसद बना लिया तो बहुत जल्द फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन, एंजाइटी, साइकेट्रिक डिजीजेस शुरू हो जाएंगी, नंबर एक। दूसरी जो बहुत अहम पॉइंट है कि जो आपकी जिंदगी का मकसद है वो टाइमलेस होना चाहिए, उसको आप टाइम पर महदूद नहीं कर सकते। अगर आपने टाइम पर महदूद कर लिया फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से हमें मिलती है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना था। अब ये टाइमलेस पर टाइमलेस है। अगर आपने टाइम फ्रेम इसको दे दिया तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगी, एंजाइटी शुरू हो जाएगी। तो जो भी आप प्लान बनाएं वो टाइमलेस होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नोबल होना चाहिए। नोबल की डेफिनेशन यह है कि आप जितनी एफर्ट करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसके बेनिफिशियरी आप और आपके बच्चों के अलावा और लोग भी होने चाहिए। इसको नोबिलिटी कहते हैं। यानी आप जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है उस ऑब्जेक्टिव के नतीजे में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो कुछ मिलेगा उसके हिस्सेदार आपके अपने फर्स्ट रिलेशंस के अलावा और भी होने चाहिए। अगर ये तीन चीजें पूरी हो जाएं तो आपकी जिंदगी वाकई ऑब्जेक्टिव फुल मीनिंगफुल जिंदगी होगी। दूसरी बात यह है कि हमें एक कंफ्यूजन होती है चैरिटी को नोबिलिटी के साथ कंफ्यूज करना। चैरिटी इज नॉट अ नोबिलिटी। चैरिटी होती ना कि हमारे घर में जो आया होती है ना उसके बच्चों की किताबें मैं देता हूं। दिस इज ये सिर्फ शो करता है कि हमारे पास हमारी जरूरत से ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो हमने उसकी कॉम्पनसेट करने के लिए अपने आप को यह समझाया है कि चूंकि देखे ना इस आया को कि बच्चों की किताबें मैंने ले दी हैं तो मैंने कितना बड़ा नोबल काम किया है। चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। इसका कतन ये मतलब नहीं कि चैरिटी नहीं होनी चाहिए मगर चैरिटी नोबेलिटी नहीं है। चैरिटी सिर्फ ये शो करती, जिस सोसाइटी के अंदर चैरिटी बहुत ज्यादा होती है वहां ये शो, वो सिर्फ ये शो करता है कि यहां पैसे की तकसीम मुनासिब नहीं है, यहां लोगों के अपने जो सलाहियतों से ज्यादा उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं एट द कॉस्ट ऑफ दोज जिनमें पैसा प्रॉपरली तकसीम होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं कर रहा बात कि उसको तकसीम होना चाहिए, इसलिए ये हमारे अपने ज़हन को क्लियर कर लेना चाहिए कि चैरिटी इज नॉट नोबिलिटी। हाँ, आपका बेटा जब पैदा हुआ था उसके साथ ही आपकी आया का बेटा पैदा हुआ था, आपका बेटा अब डॉक्टर बन गया है, आया का बेटा आपके जूते पॉलिश कर रहा है, लेकिन उसकी किताबें आपने लेके दी थी। चैरिटी ये होती कि उसके साथ साथ कम अज कम आपकी आया का बेटा भी तो क्लर्क बना हुआ होता किसी जगह पर, ड्राइवर के बच्चे वही हमारे खानदानी मुलाजिम है, और हमारा नलायक बच्चा चूंकि हमारे पास पैसे थे हमने उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर में डॉक्टर बना के एफसीबीएस बना के और उसको कहीं जॉब भी दिलवा दी है। तो चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी। चैरिटी ये है और नोबेलिटी ये है कि जो लोग आपके साथ हैं आपने उनको लिफ्ट कितना किया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना इंप्रूव किया, उनको अपने बराबर खड़ा किया कि नहीं किया। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाली आपकी आया, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाली आपकी वो जो घर में मुलाजम हमारे काम करने वाले वो वहीं के वहीं हैं, और हमारे नलायक बच्चे जो है पैसे के सर के ऊपर ऊपर निकल गए। तो ये तीन जो हैं, ये तीन बुनियादी बातें हैं जो कि वाकई एक तब्दीली लेके आएंगी आपकी जिंदगी के अंदर, एक इनकलाब मेरी और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा अगर हम ये तीन, मैं दोहराता हूं, पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए, हमारा कोई मकसद होना चाहिए, ये इसका भी कोई मकसद है, इस कागज का, इस टिश्यू पेपर का, इस टिश्यू पेपर का भी एक मकसद है। तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है अगर उसका कोई मकसद नहीं है तो वो तो उससे तो टिश्यू पेपर बेहतर है जो किसी का नाक पूंछ के कम अज कम इस्तेमाल तो हो रहा है। तो हमारी जिंदगी एक मीनिंगफुल और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और उसके लिए तीन शरायत है। पहली शर्त यह है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी जरूरत नहीं होना चाहिए। नंबर दो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो टाइमलेस होना चाहिए, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बेनिफिशियरी, उसके जो बेनिफिशियरी हैं उसके अंदर हमारे अलावा और भी लोगों, इसको हम नोबिलिटी कहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी, और आखिरी ये है कि ये चेंज की जो आपने बात की ना, हम सब चाहते हैं तब्दील होना चाहते हैं। आप में से कौन है जो नहीं चाहता पाकिस्तान तब्दील हो जाए? आप सब चाहते होंगे हमारा मोहल्ला तब्दील हो जाए, आप चाहते होंगे जिस इदारे में आप काम करते हैं वो तब्दील हो जाए। और जब हम ये वर्कशॉप तब्दीली की कराते हैं ना, तो हम उनको एक कागज देते हैं, कहते हैं इस पर लिखिए कि अगर आपको फर्ज करें पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए या वजीर आजम बना दिया जाए तो आप पहली तब्दीली क्या लेके आएंगे और किस में लेके आएंगे। तो अक्सर मैंने देखा है लोग कहते हैं हम जी यहां इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, कुछ कहते हैं जी हम मेरिट को लेके आएंगे, कुछ कहते हैं जी हम गरीबों को लेके आएंगे, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि मैं जावेद इकबाल को चेंज करूंगा। बुनियादी तौर पर जो चेंज का अमल है वो हमेशा तो मैं आजकल मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा हो रहा है इस बुनियाद पर कि मैं बेहतर हो रहा हूं। अगर मैं बेहतर हो रहा हूं तो पाकिस्तान बेहतर हो रहा है।